होती है कॉज एंड ऑप्शन थ्योरी से, जिस कारण नहीं होने से कार्य नहीं हो सकता, और जो कार्य जो दिखता अभी जो दिखता है इतना रूप, इतने रूप दिखते हैं, कितने पेड़ पौधे जीव जंतु जो देखते हैं संसार में, ये सब उन्हीं क्या है, कोई ये सब की है, कोई कुछ है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो उसमें भी ये रूप जरूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुत्र पिता का जैसा शरीर है वैसा ही होगा, माता और पिता दोनों काले हैं तो बेटा कैसा होगा, वो भी काला होगा, और माता पिता में से कोई एक गोरे हैं तो हो सकता है कोई गोरा या काला होगा, और ऐसे ही हाथ मुख जैसे उनका है वैसे होगा। यदि गाय है तो उसका बेटा कैसा होगा, बच्चा आदमी जैसा होगा नहीं। तो प्रत्येक बीज में उसकी पोटेंसी होती है जो दिखाई नहीं पड़ती। तो इस ब्रह्म में जिसे ये जगत पैदा हुआ इतना रूप, उसमें रूप नहीं होता तो ये कहां क्या है, जब वह जीरो है उसका रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो विचार तो करो, तो ये कैसे हो गया। जाने की कोई अत्यंत भ्रामक और गलत और जब अंदर से मनुष्य हुआ ये सब गलत, ये जितने भी ये देखे जाते हैं इसका प्रभु में ये सब रूप है और उनका रूप है। जब भी कहो ये प्रश्न आए कि जितने भी रूप देखे जाते हैं तो उनका तो जन्म होता है तो वो मर जाते हैं, तो जब भी ब्रह्म का रूप मान ले तो उनका भी जन्म हुआ तो वो मर जाएंगे क्योंकि उनका शरीर है, ऐसा सोचना गलत है। ब्रह्म जो है कभी जन्म लेने से मरते नहीं, उनका शरीर नित्य है, इसलिए कहा गया है अवतार। अवतार माने क्या, जो उतरते हैं कहां से उतरते हैं, जहां उनका नित्य धाम है वहां पर नित्य उनका वह शरीर है, और वहीं से उतरते हैं इसको कहते हैं अवतार। अवतार यह नहीं कि उनका कोई रूप नहीं था फिर उतार नहीं करते, ऐसा नहीं, उस रूप को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो स्किन में है, किंतु भगवान अनुग्रह करके अपनी योग माया से जब वो अपना रूप दिखला देते हैं तो आंखों के सामने उतर जाते हैं, इसलिए उनको अवतार। कृष्ण पहले नहीं थे और पीछे में ये गलत था, योग माया के प्रभाव से हम लोगों के आंखों के सामने जब दिखाई पड़ते हैं तो उनको हम देखते हैं इसलिए उनको अवतार करते हैं। रामचंद्र जी को भी ऐसे वो पहले भी थे अभी भी हैं आगे भी रहेंगे, उनका रूप जो धर्म के आया था उनका रूप सही है, वो न कभी मरते हैं न कभी जन्म लेते हैं। तो वो चले गए, जो चले गए उन्होंने जो माया के पास हटा दिया, अब उनको हम देख नहीं सके तो कहते हैं जो अपने ध्यान अभी भी सर्वस्थ हैं देख उनका। यदि कहिए कि उनका रूप भगवान का नहीं है और जब सबको लोग बुलाते हैं सब आते हैं, ऐसा नहीं, उनका रूप है, जब प्रार्थना करते हैं वो दर्शन दे देते हैं, कुछ दिनों के लिए क्रीड़ाएं करते हैं और फिर अपने धाम में प्रवेश कर जाते हैं। यह स्टोरी ऐसा है कि कुछ है ही नहीं है, फ्रॉम जीरो सिंह प्रिय थे या गलत, देर मस्ट बी समथिंग एंड व्हाट दैट समथिंग इज, वो क्या है, पूर्णम मदम पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। वो पूर्ण है, उसे जितना भी बाहर करो तभी पूर्ण रहेगा, आज जो निकाल लिया वो भी पूर्ण रहेगा। इसलिए ब्रह्म जो है वो पूर्ण है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इस सभी को समझिए। वो इंफिनिटी सभी वो पूर्ण है, उससे जो कुछ भी निकलता है तभी वो पूर्ण है, जो निकलता है वो भी पूर्ण है। अद्भुत बात है, वो जीरो नहीं है जो कभी जीरो था, ऐसा मत। इसलिए नथिंग से कोई चीज नहीं हो सकती, यदि होती तो आजकल नए नए मनुष्य से भी और कोई दूसरा कोई जानवर पैदा हो जाता, आदमी पैदा हो जाता, कोई और अद्भुत चीज हो जाती, करोड़ों वर्षों से कोई चीज पैदा नहीं हुआ दूसरा, क्योंकि उनका जो रूप है भगवान में उनमें सब तरह की पोटेंसी है रूपों की, और उनका नारायण जो श्याम सुंदर मदन मोहन जो रूप है, नवकिशोर नरहर जो रूप है, यही उनका मूल रूप है। और इसी रूप से सभी कुछ एक चीज को ठीक से रखें। इसीलिए उपनिषद में भी वेदों में भी सर्वत्र गीता भागवत सर्वत्र यही कहा गया है, अरूपवत एवही तत्प्रधान स्वाह, अरूपवत एवही नरूपवत, भगवान अरूप नहीं है, उसको देखते नहीं इसलिए आप कहते हैं, क्योंकि आपकी आंखें ऐसी नहीं जो देख सके, आप तो चिंतन में आत्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा को क्या देखें, वो तो साधन के द्वारा होता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ आग है कि नहीं, आग है ना सर्वत्र, एक पत्थर को पत्थर लीजिए उसको रगड़ लीजिए आग नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आग नहीं है, किंतु साधन के द्वारा वो आग दिखाई पड़ती है। ऐसे साधन के द्वारा दिखाई पड़ते हैं नित्य, और जब हमारा साधन पूर्ण हो जाएगा तो सर्वत्र उनको हम देख सकते हैं। शरीर में आग नहीं रहती तो ये हजम नहीं होता, हम जो कुछ खाना खाते हैं वो पच नहीं पाता, कभी कभी बुखार जब होता है तो आग की ताप कुछ समझ में आती है, ये सर्वत्र है। वैसे ये ब्रह्म सर्वत्र है, उनका रूप है, हम उन आंखों से नहीं देखते। हमारे वेदों में तो शास्त्रों में तो ये लिखा है, ओम सदविष्णु परम पदम सदा पश्यंतीचुरागतम सदा पश्यंती, जो मुक्त महापुरुष हैं वो नित्य पश्यंती पश्यंती मन गया है, देखते आंखों जैसा देखते हैं, यहां पर लिखा ऐसा कुछ शास्त्र नहीं है जिसमें देखना, हम हिंदुओं की शास्त्रों की तो बात छोड़िए, देव परिसर शास्त्र की आभार हो, ऐसा कोई शास्त्र जो हमसे नहीं शास्त्र, जो हिंदुओं का भी कोई शास्त्र नहीं है जो कि पुराण कहते हैं, और क्रिश्चियनों का भी शास्त्र भाई गुरु है, उसमें भी लिखा मैं गॉड क्रिएटेड मैं आफ्टर हिम ओम, यदि बाइबल कोई पढ़ने वाले हैं तो देखें उसमें लिखा है गॉड क्रिएटेड मैं आफ्टर हिम ओम, जैसा उसका रूप था ऐसे ही उन्होंने मनुष्यों को पैदा किया, देखो बाइबल सही है। दूसरी बात जो ईसा मसीह है यीशु क्राइस्ट जो है वो कहा जाता है कि भगवान के गॉड के पुत्र थे, क्राइस्ट के पुत्र माने जाते हैं, सब पुत्र का जैसा रूप है क्राइस्ट जेसस का, तो उनका माँ का फादर का रूप कैसा होगा, कुछ रूप होगा कि नहीं, मैं कैसे पैदा हो गया जीरो रंग के हुए, जरूर उनका कोई फादर है, तो उनका फादर कौन है, वो क्राइस्ट को कहते हैं। क्राइस्ट माने क्या, कृष्ण कोई शब्द है लेकिन कृष्ण कृष्ण कहां से आया है? हमारे ये यीशु ईसा मसीह ये गए थे भारत में, वाराणसी में गए, मथुरा में गए, जगन्नाथपुरी में गए, अपनी बचपन की स्थिति में युवा अवस्था में और भारतीय संस्कृति का प्रभाव उन पर पड़ा और तब ये क्राइस्ट शब्द आया कृष्ण से, कृष्ण क्रिस्ट 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 क्राइस्ट एक ही है अपभ्रंश। जैसे हम कृष्ण को कभी कलेजिया कानू कैटो कृष्ण ये ऐसे धीरे 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 बहुत दिन से बिगड़ते बिगड़ते शब्दों का अपभ्रंश होते हुए वो क्राइस्ट माने कृष्ण से आए, इसलिए कृष्ण के बेटे हैं उनकी मैसेजर। इसलिए बाइबल में भी ऐसा लिखा गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ये जरूर मानना पड़ेगा। दूसरी बात किसी न किसी रूप से मानते हैं, मुस्लिमों में भी कुरान में हदीस में लिखा गया इन्ना अल्लाह खलका मिन सूरतिन, खुदा अल्लाह ने अपने सूरत के अनुसार में मनुष्यों को बनाया। यहां पर मुझे भले ही ना मैंने लोग किंतु तत्वों को बाइबल और कुरान से ये शब्द हटा देना चाहिए। पैगंबर किसको कहते हैं दूर को, ये उनके पैगंबर किसके पैगंबर, जिनका कोई इसमें इसका पैगंबर नहीं, वो भी बड़े दयालु हैं, खुद है खुदा भी या खुद जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। जैसे हमारे भागवत में ऐसे कहते हैं कि हम ब्रह्मा मैं कि तुम कारूप नहीं रहने से बाइबल नहीं होता मैं भी नहीं रहता। आप बौद्ध धर्म में देखेंगे हजारों जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां 12 फुट 14 फीट 20 फुट की मूर्तियों को बनाकर बना रहे जन्म रोक दिया था। यदि भगवान का रूप ही नहीं है तो चर्च किस लिए बने, किस लिए चर्च खुले आकाश में उनकी उपासना कर ले, चर्च बनता है किस लिए, उनकी उपासना के लिए क्या जरूरत क्या, आकाश खुले आकाश में नीचे और निराकार का अध्ययन क्या होगा, निराकार जो शब्द है इसमें ही आकार है, नियम जो है सर्ग कहलाता है और उसमें आकार पहले रूप से अरूप आकाश से निराकार इत्यादि शब्द बनते हैं, गुण से निर्गुण बनता है, इसलिए गुण आकार रूप ये सब मौखिक शब्द है। इसलिए भगवान का भगवान का रूप नहीं आया था, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जो भगवान का रूप नहीं आया, किंतु रूप दो एक उत्तर एक ये पार्थिव मैं कहते हूं बनीजिए जिनको आंखें देखती है उसको भी सूर्य की रोशनी या किसी रोशनी के कारण और साधारण लोग भगवान के अपराधिक उसको रूप को ले देते हैं, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। जब वो अपने को समझेगी मैं चेतन वस्तु हूं सतत भी भगवान का रूप देख सकते, इसलिए कृष्ण और राम इत्यादि ये स्वयं भगवान है। कृपा करके अपने रूप को जब प्रकट करते हैं तो उसको हम देख लेते हैं, ऐसा मत समझेंगे कि ये भगवान है। तो प्रश्न कोई कर सकता है ऐसा, और सब धर्मों में तो एक ही भगवान माने जाते हैं, हमारे यहां बहुत से भगवान क्यों, क्यों बहुत से भगवान, और बहुत से देवता देवियों की पूजा होती है, तो सनातन धर्म में कोई एक खास देवता देवी नहीं है जिनकी पूजा कहते हैं कि तुम ये अज्ञानता के कारण कह रहे हो, यदि किसी कॉलेज में केवल एक ही स्कूल एक ही क्लास रहे पढ़ाई होगी, एक ही क्लास है मान लिया और दूसरा कोई क्लास नहीं है, तो आदमी अधिक शिक्षित नहीं हो। हमारा बाबा अपने सनातन धर्म में बहुत ही सीढ़ियां स्तर है, भगवान एक ही है, दो नहीं है, किंतु अपने भक्ति के साथ हमने हम उसको बहुत रूपों में देखते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दो खूब अच्छी तरह से समझेंगे और तब फिर भगवान की कथाओं में मजा आएगा, आनंद आएगा। ऐसे नहीं, जैसे चंद्र एक है तो चंद्र है कि एक है विश्व में, सारे विश्व में एक ही चंद्र है ना, पूर्णिमा के दिन में वो पूरा दिखता है और दूसरे दिन की अमावस्या में वो दिखता नहीं। प्रतिपद को एक कला की दिखती है, फिर दो कला, तीन कला, चार कला, चतुर्थी में चार कलाएं और धीरे 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 अष्टमी नौमी दसवीं एकादशी द्वादशी में उसकी बहुत सी कलाएं दिखती। तो चंद्र इतने मूर्ख लोग कहेगा कि वो द्वादशी के दिन में ये दूसरी चंद्रमा है और पूर्णिमा के दिन में दूसरी है और तृतीया चतुर्थी में दूसरी चंद्रमा है और बुध के दिन जो दिखती है वो अलग है, चंद्र अलग है। यदि आप आकाश में एक ऐसे स्तर में उठ जाए जहां पर पृथ्वी की छाया चंद्र पर नहीं पड़ती है, आपको प्रतिदिन ही पूर्ण एक ही चंद्र दिखाई पड़ेगा। उस समय आपको एक दो तीन चार ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, एक पूरा दिखाई पड़ेगा। किंतु पृथ्वी और चंद्र और सूर्य घूमते हैं और इनकी घूमने की दूरी ऐसी है, एंगल ऑफ विजन वाले जो बनता है प्रतिदिन उसमें अंतर होता है और चंद्र में कलाएं होती है, इसलिए चंद्र अलग होती है। इसी प्रकार से भक्ति के तारतम्य से जिसमें जितना भक्ति या प्रेम है श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो अपने भक्ति के तारतम्य से उपासना के तारतम्य से एक ही कृष्ण को बहुत कभी राम के रूप में देखता है, कभी नित्य के रूप में देखता है, कभी और भी जितने भी भगवान का होता है। यदि चंद्र है तो तारा भी रहेंगे, ये तारा क्या है, ये देवता स्वरूप उनकी शक्ति है, भगवान की शक्ति अलग कोई तत्व नहीं है। इसलिए जो कि अज्ञानता के प्रथम स्तर में होता है वो कुछ तांत्रिक स्वभाव का, वो भूत पिशाच प्रेत और तांत्रिक देवताओं की उपासना ये पहली पीढ़ी है सनातन धर्म, उसके विश्वास को नष्ट मत करो। जपन नदी बता रहे जनते सत्यानी सत्य अपिमाम कंते वो जनती अभी जितने भी प्राणी हैं घास तक भी उनकी की उपासना हमारे लोग करते हैं, किस लिए भगवान उनमें है, उनका निरादर मत करो, एक किसी का भी निरादर मत करो, सब में भगवान है। किंतु भगवान है किंतु उनकी उपासना जो पृथक रूप में जो कर रहे हो ये उपासना की पद्धति जो है ये कोई सी अभी इजी नहीं है। जैसे हम मुख में पानी लेते हैं, पी लेते हैं, भोजन देते हैं, जब हम कहें कि हम आंखों को देंगे, आंख को चीज करके दूध डालो आदमी मर जाएगा, पेट को चीज करके दो मर जाएगा। इसी प्रकार के मुख में पानी दो, मुख कौन है, वही कृष्ण है, राम है, भगवत है। पृथक पृथक देवता देवियों की पूजा करने से भगवान की ही पूजा हुई क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो कुछ देते हैं, किंतु ये पूजा थोड़ी उल्टी हो गई, अभी भी पूर्वक हो गई। यदि भगवान की पूजा करे सभी सुनते जगत उनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। एक कृष्ण की पूजा करने से जितने अवतार हैं जितने हैं देवता देवी सबको पूजा हो जाए। जैसे घर में थोड़ी सी मिठाई किसी को मिली और उसने घर की जो मालकिन है पत्नी है माली थी उनके हाथ में दे दो तो वो बच्चों को बराबर बराबर उसमें सबको घर वालों को बांट दे और सबको दे दे और एक बेटे को दे दो तो क्या करेगा सब हरा जाएगा वो दूसरों को नहीं देगा। एक छोटा सा बेटा है उसके हाथ में लड्डू तो आउट से मानो तो रूने लगेगा वो नहीं देगा किंतु मैया को दे दो प्रोपोर्शन रूप में सबको बांट दे। ऐसे ही एक कृष्ण को पूजा करने से सारे देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं सारे वो लोग भी भगवान के साथ साथ और शक्ति है जो नहीं जानते वो देवताओं की पूजा ठीक है करने को आगे वो साधनों के संग में समझ करके आगे बढ़े। इसके बाद में जो लोग ब्रह्मा शंकर महेश इत्यादि की पूजा करते हैं वो लोग मेरी पूजा करते हैं भगवान की पूजा करते हैं शंकर शंकर जी है क्या भगवान के साथ में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है भगवान की शक्ति है भगवान ने ही उनमें शक्ति संचरित की है किंतु थोड़ा सा देखो विचार करते रावण शंकर जी की पूजा करता था कंस शंकर जी की पूजा करता था हुआ क्या मारे क्यों गए वो अशुभ ब्राह्मण पर अशुभ क्यों कहा गया शंकर जी बचाए क्यों नहीं इसलिए शंकर जी को भगवान का दास मान करके वैष्णव दास मान करके उनसे मान सब कुछ दे ये इत्यादि भी कोई बात है और उनको भगवान मान करके पूजा करोगे तो भरतमात्र की जो दत्तावली कंस की दत्तावली रावण की कुंभकर्णी और वीरेंद्र इत्यादि की जो दत्तावली वही दत्ता तुम्हारी होगी विष्णु की उपासना की लाखों लाखों विष्णु लाखों लाखों ब्रह्मा लाखों लाखों महेश शंकर जिनसे पैदा होते हैं जिनसे प्रकाशित होते हैं वो उस तत्व भगवान को एक सब जो राजसिक है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि देवताओं की गणेश की पूजा करते हैं किंतु गणेश की पूजा करने से कैसे देते हैं उन्होंने राम नाम लिखा उसको तीन बार परिक्रमा करनी विश्व की परिक्रमा हो गई और सबसे को जो जगत से विश्व बने इन चीजों को समझ जो इससे ऊपर है वो सात्विक है निर्गुणों में निर्गुणों क्या करते हैं राधा कृष्ण की या राम सीता राम की ये सब उपासनाएं हैं किंतु ये सारी उपासनाओं का मूल क्या है तो रूप सब में है कोई भी अर्थ नहीं है इस चीज को समझो। इसीलिए इस विषय में तो और भी बहुत कुछ कहना था किंतु समय कम है फिर कभी पांच सात दिन के लिए हम आएंगे आप लोग व्यवस्था करें उनका आपका विशेष रूप में बतला रहा इन उपासनाओं की पद्धति और जो विचार है उनके लिए आए हैं सीता जी रामचंद्र जी की उपासना शंकर जी किए थे ये तुलसी की रामायण में वाल्मीकि रामायण में पूजित है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकले हैं और वो जगत की सृष्टि कैसे करते हैं जैसे बड़े बड़े कारखानों में कहीं से इंजन मंगाया कहीं से वो पूजा मंगाया वो पूजा मंगाया और सब मिला करके इस कंपनी का नाम रख करके एक मोटर कार तैयार कर ब्रह्मा जी के चलते भगवान के बनाए हुए स्थिति जल पाव गगन समीरा ये पंच तत्व और सब बोले करके जोड़ करके मनुष्य का ये जड़ करी कर आत्मा को नहीं इसलिए इन सब देवताओं को मानिए किंतु ऐसा करना चाहिए कि जो कि सात्संभव इसलिए भागवत में श्रेणी बनाए गए जो देवताओं की पूजा करते हैं वो भी सनातन धर्म में ही है वो से अलग नहीं है किंतु अभी नीचे के क्लास वन में है उसे ऊपर जो विशेष विशेष देवताओं की पूजा करते हैं वो कुछ राजसिक है अपने धन जन पुत्र परिवार के लिए उनकी बात ये राजसिक है उनके सात्विक वाले जो हैं और उनके हैं और आराधक के लिए संपूर्ण रूप में जान करके तत्व से आराधना करते हैं भगवत प्रेम के लिए भगवत सेवा के लिए ये निर्गुण उपासना किंतु सब में उसकी स्वस्थ की जरूर है इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन किया गया, उस ब्रह्म को देने की पद्धति क्या है। सबसे पहले हमारे यहां श्रीमद् भागवत में और उपाख्यानों के बाद में भ्रुव जी का उपाख्यान बताया गया। ध्रुव जी को चोट लगी थी, किसी की मैया की बात, जाओ तुम मरो, हमारे जन्म में आओ और फिर जन्म लेकर के कब राजगति पर अपने पिता की गोदी में बैठे। रोने लग गए, फिर माता के उद्देश्य कैसे किया दिया और कैसे सम्मान का दर्शन किया, उनके कृपा से चलिए विश्व काबुल सम्राट बन गया और अंत में मुक्ति भी मिल गई, भगवान का परम धाम को प्राप्त हो गया। हमारे श्रीमान नवीन जी आपके इस विषय में थोड़ा सा बता पांच छह दस मिनट बस।
गुरुदेव से आदेश दिया कैसे ध्रुव महाराज जी भगवान को लाभ किया, इस प्रकाश करने को आदेश मिला। प्राचीन काल में संतयुग में उत्तमपाद नाम के राजा थे, उनके दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति दूसरी के नाम सुरुचि। सुनीति और जो अपने बच्चे को जब तो शिक्षा देती है कि गुरुजन को सम्मान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे जो शिक्षा देती है उनको कहा गया सुनीति। और सुरुचि जो अच्छे से खाओ पीओ बच्चों ऐसे उनकी अच्छे से खाने पीने में भगवत भजन में गुरुजन में इनका आदर नहीं है, इसको कहा गया सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव, सुनीति का पुत्र था उत्तम। एक दिन राजा उत्तम का रानी सुनीति के साथ बैठे हुए थे, उत्तम भी बैठा हुआ था, ध्रुव को देखकर के इच्छा भी मैं भी क्यों ना अपने पिता को लिए जाके बैठू, अपने पिता को लिए बैठने के लिए आए। आते ही उनके फतेही माँ सुनीति ने कहा, अरे ध्रुव तू क्या पिता को लिए बैठेगा, क्या तू पहले मर करके मेरा पक्ष जन्म ले तभी तू पिता के कभी में बैठ सकता है। ये सब फतेही माँ का वास्तवान छोटा सा बच्चा हृदय में चूक गया, रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया, रोने लगे। सुनीति उनको मनाने के बहुत कोशिश की, उन्होंने माने नहीं। जब उनको पता चला कि उनकी फतेही माँ के वास्तवान से विश्व होकर के बच्चा रो रहा है, तब बताया बेटा कि छोटा सा इस बात के लिए रो रहा है, तुम एक काम करो, तुम जगत की जो पिता है भगवान हरि की आराधना करो, उनके गोदी में बैठने पर सबसे गोदी में बैठना हो जाएगा और कुछ बाकी नहीं रहेगा। सुनते ही उनको मन में कुछ अच्छा जगी, रात्रि माँ के गोदी में सो गया, माँ तो सो गई बच्चा सोए नहीं। रात में उठ के आए जंगल में, आके मथुरा में जमुना में ध्रुव था वहीं पर स्नान किया, स्नान करके भगवान पद्म पलाप रचन हरि के लिए तपस्या शुरू कर दी। कैसे शुरू,
कैसे वो मिलेंगे,
कैसे शुरू करेंगे, भगवान को भजन के लिए शास्त्र में कहा गया बिनु गुरु भवन जी करे न कोई जो विनती संकल्प होई। भगवान को भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिनु गुरु भवन जी करे न कोई, बिना गुरु जी के कृपा के सिवाय कोई भी भगवान को लाभ नहीं कर सकते। हमें किसी दिशा में पार होने के लिए स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, मुझे टीचर का प्रिंसिपल का अनुभव को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। हम हर दिन बजाएंगे तभी किसी के पास जाना पड़ेगा, तो भगवत भजन करेंगे ऐसे बिना किसी के अनुभव को स्वीकार किए हो जाएगा संभव नहीं। जो इसी सब एकता के उनके पास जाना पड़ेगा।
भगवान का दर्शन किया
वो कौन है? जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, उसके चरण में अनुभव उनका अपने को नछावर करना पड़ेगा, तभी हम सीख सकते हैं। ऐसे जो हमारा की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं,
इसने में भगवान ने ना
भगवान तुम तो दयालु है। भगवान ने कहा नारद तुम मोक्षधाम में जाओ, मेरा एक भक्त भजन करना चाहता है, ये उनका गुरुकरण नहीं हुआ इसलिए वो भजन ठीक से नहीं कर पा रहा है, तुम जाओ। भगवान नारद जी को भेजा, नारद ऋषि ध्रुव महाराज जी के पास आए, उन्हें भेजा तुम उसे जंगल में क्या करने के लिए आ रहे हो? मैं हरि का भजन करने के लिए आया हूँ। अरे छोटा सा बच्चा तुम क्या भजन करोगे? सब तुम्हें काटेगा, फिर निकल जाएगा। अरे जाओ वापिस जाओ, पर कुछ भी हो मैं तो भगवान के भजन करूंगा ही करूंगा, ऐसे तू और गाय करूंगा या मरूंगा, करो या मरो, ऐसे ही व्रत होना चाहिए, तभी हम भगवान को भजन कर सकते हैं। तो नारद जी कहते थे, उसके लिए कहा गया गुरु